पृष्ठ संख्या 162, द्वादश अध्याय का शेष। ह्यूम के अनुसार मानव ज्ञान के दो प्रकार हैं, एक तो विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान या नॉलेज ऑफ द रिलेशंस ऑफ आइडियाज, और दूसरा वस्तु जगत का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द मैटर्स ऑफ फैक्ट। गणित शास्त्र और तर्क शास्त्र में प्रथम प्रकार का ज्ञान होता है, अतः गणित और तर्क में निश्चित और असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ दो और दो चार ही होते हैं। यहाँ सार्वभौम और अनिवार्य सिद्धांतों की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि यह कोरी कल्पना या फॉर्मल नॉलेज है और इसका वस्तु जगत से कोई संबंध नहीं, किंतु वस्तु जगत इंद्रिय अनुभव या इंपिरिकल नॉलेज पर प्रतिष्ठित है। अतः यहाँ निश्चित और असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 163, वस्तु जगत में सार्वभौम अनिवार्य संबंध संभव नहीं, यहाँ केवल विशेष घटनाओं का पृथक पृथक संवेदन या विज्ञान होता है और विशेषों के आधार पर उनकी सीमा का अतिक्रमण करके सामान्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ केवल अनंतर संभव है, अनिवार्यता संभव नहीं। वस्तु जगत के संबंध में हमारे अनुभव के लिए सार्वभौम और अनिवार्य नियमों की सिद्धि असंभव है, और इसलिए वस्तु जगत का ज्ञान सदा संभावित होता है, निश्चित नहीं। अतः भौतिक विज्ञान वास्तविक अर्थ में असंभव है। अनिवार्यता की कल्पना मनोवैज्ञानिक आवश्यकता हो सकती है, किंतु वास्तविक तथ्य नहीं। ह्यूम बर्कले से इस बात में सहमत हैं कि हमें जड़ तत्व का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ तत्व हमारी इंद्रियानुभूति का विषय नहीं। हमारे ज्ञान के विषय केवल संवेदन या विज्ञान हैं, और इनके आधार पर जड़ तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। किंतु बर्कले ने आत्म तत्व को स्वीकार किया था, क्योंकि अनुभव के लिए अनुभविता की सत्ता मानना आवश्यक है। आत्म तत्व को उन्होंने विज्ञानों का अधिष्ठान माना था। ईश्वर की कल्पना भी बर्कले ने हमारे संवेदनों को उत्पन्न करने वाले कारण के रूप में की थी। ह्यूम का मत है कि जब कार्य कारण संबंध ही वस्तुतः सत्य नहीं, तो संवेदनों या विज्ञानों के कारण के रूप में किसी तत्व की प्रतिष्ठा शक्य नहीं, चाहे वह लाक का जड़ तत्व हो, चाहे बर्कले का आत्म तत्व। विज्ञानों के लिए भी उनके किसी अधिष्ठान को मानना उचित नहीं, क्योंकि हमें किसी ऐसे अधिष्ठान का अनुभव नहीं होता। ह्यूम ने कहा कि उन्हीं तर्कों से जिनसे बर्कले ने लाक के जड़ तत्व का खंडन किया, स्वयं बर्कले के आत्म तत्व का भी खंडन किया जा सकता है। सत्ता अनुभव मूलक है। इस सिद्धांत को मानने पर आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि हमें आत्मा का इंद्रिय अनुभव नहीं होता। बर्कले के अनुसार हमें अपनी आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति होती है और अन्य जीवात्माओं का और परमात्मा का अंतर्बोध होता है। ह्यूम का उत्तर है कि संवेदन या विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए अंतर्बोध की कल्पना व्यर्थ है। वस्तु जगत में हम विशेष संवेदनों और विशेष विज्ञानों के आगे नहीं जा सकते और इनके द्वारा न अन्य जीवों का बोध होता है और न ईश्वर का। अतः जीवों की ओर ईश्वर की कल्पना कोरी कल्पना है, वास्तविक तथ्य नहीं। हमें अपनी आत्मा की भी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती। जिनकी हमें अनुभूति होती है वे हैं पृथक पृथक विशेष और क्षणिक संवेदन या विज्ञान। पृष्ठ संख्या 164। इस विज्ञानों के किसी नित्य और एक अधिष्ठान की प्रतीति हमें नहीं होती। इन क्षणिक विज्ञानों की धारा निरंतर बह रही है, इनमें सादृश्य और अनंतर है, किंतु तादात्म्य और नित्यत्व नहीं। अनुभव कभी नित्य संवेदन या नित्य विज्ञान उपस्थित नहीं करता। अतः नित्य आत्मा का विज्ञान या संवेदन कभी नहीं हो सकता। ह्यूम ने लिखा है, मैं उन दार्शनिकों से जो अपने विचारों का आधार द्रव्य और पर्याय के भेद को मानते हैं और कल्पना करते हैं कि उनको इनका स्पष्ट ज्ञान होता है, पूछना चाहूंगा कि द्रव्य का विज्ञान संवेदन संस्कार से उत्पन्न होता है या स्वसंवेदन संस्कार से। यदि द्रव्य का हमें संवेदन होता है तो मैं पूछता हूँ कि किन इंद्रियों से और किस प्रकार। यदि द्रव्य की प्रतीति आँख से होती हो तो उसका रूप होना चाहिए, यदि कान से तो शब्द होना चाहिए, यदि रसना से तो रस होना चाहिए और इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के विषय में प्रतीति होनी चाहिए। किंतु मेरा विश्वास है कि कोई यह नहीं कहेगा कि द्रव्य रूप है या शब्द है या रस है। अब यदि द्रव्य सत्य है तो उसका विज्ञान स्वसंवेदन संस्कार से आना चाहिए, किंतु स्वसंवेदन संस्कार या तो हमारी भावनाएं हैं या हमारे मनोवेग, और इन दोनों में से कोई भी द्रव्य नहीं हो सकता। अतः द्रव्य का विज्ञान वस्तुतः कल्पना द्वारा संयुक्त सरल विज्ञानों के उस समूह के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जिन समूह को द्रव्य का नाम दे दिया जाता है, यह लॉक के विचारों की व्याख्या है। लॉक ने इन विचारों को मानते हुए भी जड़ तत्व की सत्ता स्वीकार की और बर्कले ने उसका निराकरण किया, किंतु बर्कले ने स्वयं इन विचारों को भुलाकर आत्म तत्व का प्रतिपादन किया। ह्यूम ने उसका भी खंडन किया। वे लिखते हैं, मैं चाहता हूँ कि वे दार्शनिक जो यह बहाना बनाते हैं कि उन्हें आत्म तत्व के विज्ञान की प्रतीति होती है, यह बताएं कि वह विज्ञान किस संस्कार से उत्पन्न होता है। क्या यह संवेदन का विज्ञान है अथवा स्वसंवेदन का? क्या यह सुख रूप है या दुख रूप अथवा तटस्थ? क्या यह सदा बना रहता है अथवा रुक रुक कर उत्पन्न होता है? कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो यह कल्पना करते हैं कि हमें अपने आत्म तत्व की प्रतिक्षण ज्वलंत अनुभूति होती रहती है, कि हमें सत्ता का और इस सत्ता की अविच्छिन्नता का साक्षात अनुभव होता है, और जो इस आत्मा की प्रमाणातीत पूर्ण एकता और कुटस्थता में विश्वास रखते हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो जब जब अपनी इस आत्मा को देखने के लिए इसके भीतर खूब गहरा घुसता हूँ, तब तब किसी न किसी विशेष संवेदन या विज्ञान से ही टकरा कर रह जाता हूँ। पृष्ठ संख्या 165। जो संवेदन या विज्ञान गर्मी या सर्दी, प्रकाश या छाया, प्रेम या घृणा, दुख या सुख आदि के होते हैं, बिना किसी संवेदन या विज्ञान के मैं तो अपनी आत्मा को कभी नहीं पकड़ पाता और न मुझे संवेदन या विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी की अनुभूति होती है। जब भी ये अनुभव मुझसे अलग हो जाते हैं, जैसे गाढ़ निद्रा में, तब मुझे अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता और उस समय सचमुच मेरा अस्तित्व नहीं रहता। यदि मृत्यु द्वारा मेरे ये सब अनुभव मिटा दिए जाएंगे तो मुझे पूर्ण असत बना देने के लिए और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर और निष्पक्ष विचार के बाद भी अपनी आत्मा का इससे भिन्न अनुभव होता हो, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उससे तर्क नहीं कर सकता। अपने विषय में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुझमें कोई आत्म तत्व नहीं है। आत्मा का अस्तित्व मानने वाले कुछ दार्शनिक महानुभावों को छोड़कर अन्य सब लोगों के लिए तो मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि वे लोग उन विभिन्न संवेदनों के पुंज या समूह के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। जो संवेदन अकल्पनीय वेग से एक दूसरे के बाद आते रहते हैं और जिनके परिवर्तन तथा गत की अक्षुण धारा निरंतर बह रही है। ह्यूम के विचारों का निष्कर्ष यह है, संवेदन या विज्ञान के अतिरिक्त हमें किसी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रिय अनुभव से किसी नित्य और अपरिणामी द्रव्य की, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन, सिद्धि नहीं हो सकती। तथाकथित आत्म तत्व वस्तुतः क्षणिक विज्ञानों के प्रवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विज्ञानों के अनुभाविता के रूप में आत्मा की कल्पना करना असंगत है, क्योंकि क्षणिक विज्ञान ही स्वयं अपना अनुभविता है। विज्ञानों के अधिष्ठान के रूप में भी आत्मा की कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि न तो इस अधिष्ठान की आवश्यकता है और न इसकी प्रतीति होती है। नित्य एक समरस और कुटस्थ आत्मा का हमें कभी अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे विज्ञान जिनका ही हमें अनुभव हो सकता है अनित्य, अनेक, विशेष और क्षणिक हैं। इन क्षणिक संवेदनों या विज्ञानों में सादृश्य और अनंतर है, एकता और नित्यता नहीं। पृष्ठ संख्या 166। जल प्रवाह और दीप शिखा के समान इन क्षणिक विज्ञानों की धारा बड़े वेग से निरंतर बह रही है। तीव्र वेग और अनवच्छिन्नता के कारण समानता या सिमिलैरिटी, एकता या आइडेंटिटी की भ्रांति का रूप ले लेती है और अजस्र प्रवाह नित्यता की भ्रांति का। तथा कथित आत्मा वस्तुतः क्षणिक संवेदनों या विज्ञानों का निरंतर प्रवाह मात्र है। सुषुप्ति में यह धारा टूट जाती है, अतः हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता। इस संवेदन पुंज को हम आत्मा का रूप दे देते हैं। यह हमारी कल्पना है, वास्तविक तथ्य नहीं। इस प्रकार ह्यूम के खंडन प्रहारों के आगे कोई तत्व नहीं टिक पाता, न ईश्वर, न आत्मा और न जड़ जगत। हमारा सारा ज्ञान इंद्रिय अनुभव तक ही सीमित है और इस ज्ञान से किसी एक या नित्य तत्व की सत्ता सिद्ध नहीं होती। यह ज्ञान विशेषों का ही है, सामान्य का नहीं। संवेदनों से कभी निश्चितता, सार्वभौमता या अनिवार्यता नहीं मिल सकती। अतः हमारा सारा ज्ञान संभावित मात्र है, निश्चित नहीं। जड़ तत्व पर प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञान, आत्म तत्व पर प्रतिष्ठित मनोविज्ञान या दर्शन और ईश्वर तत्व पर प्रतिष्ठित धर्मशास्त्र, तीनों का अस्तित्व वास्तविक अर्थ में असंभव है। तीनों कल्पना पर प्रतिष्ठित हैं, सत्य पर नहीं। हमें अपने संवेदनों या विज्ञानों को ही जानते हैं। हम उनके संबंधों को सादृश्य, साहचर्य और अनंतर के संबंधों को भी जानते हैं, किंतु इन संबंधों में हमें वस्तुओं के आंतरिक और अनिवार्य संबंधों का ज्ञान नहीं होता। हम विज्ञानों के अनंतर संबंध को भ्रमवश वस्तुओं का अनिवार्य कार्य कारण संबंध मान बैठते हैं और फिर इन पर भौतिक विज्ञान, दर्शन तथा धर्म के प्रसाद बनाने लगते हैं। ये सब कल्पना की भित्ति पर बने हुए प्रसाद हैं। हमारी बुद्धि में कोई ऐसा तत्व नहीं जो इंद्रियों से नहीं आया हो। कल्पना में हम अपने विज्ञानों को उनके यथार्थ मूल संवेदनों से न मिलाकर गलत तरीके से मिला देते हैं। यही हमारा भ्रम है। संवेदनों या विज्ञानों के पारस्परिक संबंध को वस्तु जगत के संबंध समझ लेना सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे संवेदन में किसी सामान्य का, किसी निश्चित और सार्वभौम सत्य का प्रवेश नहीं हो सकता। अतः हमारा इंद्रिय अनुभव, जो हमारा एकमात्र सत्य ज्ञान है, सदा अनिश्चित और संभावित ही रहता है। यही ह्यूम का प्रसिद्ध संदेहवाद या संशयवाद है। इसी संदेहवाद ने जर्मनी के सुप्रसिद्ध महान दार्शनिक कांट को मोह निद्रा से जगाया था। ह्यूम एक युग प्रवर्तक दार्शनिक हैं। बुद्धिवाद की रूढ़ियों का खंडन उनकी मुख्य सफलता है। पृष्ठ संख्या 167। जिस अनुभववाद को मानकर वे चले हैं, उसके अंत तक निर्भय होकर पूर्ण निष्पक्ष रीति से विचार करते हुए वे पहुँचे हैं। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक और आलोचनात्मक रही है। उनको अज्ञेयवादी या एग्नोस्टिक कहा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार तत्व हमारे लिए अज्ञेय है। उनको संदेहवादी या स्केप्टिक कहा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार हमारा ज्ञान कभी निश्चयात्मक और अनिवार्य नहीं हो सकता। उनको व्यवहारवादी या फिनोमिनोलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार हमारा सारा ज्ञान विज्ञानों का ज्ञान होने के कारण व्यवहार मात्र है। उनको प्रत्यक्षवादी या पॉजिटिविस्ट कहा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार केवल संवेदन या उनके प्रतिरूप विज्ञान ही हमारे ज्ञान के विषय बन सकते हैं। उनको इंद्रिय अनुभववादी या इम्प्रेसिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार सत्य ज्ञान इंद्रिय अनुभूति में ही सीमित है। उनको संवेदनवादी या सेंसेशनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार हमारे ज्ञान में कोई ऐसा तत्व नहीं आ सकता जो संवेदन में न रहा हो। ह्यूम की आलोचना भी बहुत अधिक हुई है। बर्ट्रेंड रसेल ने कहा है कि ह्यूम का खंडन करना दार्शनिक प्रिय विषय रहा है। वस्तुतः यदि इंद्रिय अनुभववाद को स्वीकार कर लिया जाए, तो ह्यूम के विचारों से सहमत होने के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। ह्यूम ने जो कुछ कहा है, अपनी दृष्टि से सत्य कहा है। यह सत्य है कि इंद्रिय अनुभव के द्वारा कभी निश्चयात्मक, सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान नहीं हो सकता। यह सत्य है कि यदि हमारे ज्ञान के एकमात्र विषय संवेदन या विज्ञान ही हो, तो न ईश्वर की प्रतिष्ठा हो सकती है, न आत्मा की और न जड़ जगत की। ह्यूम की इन तत्वों की आलोचना और इन तत्वों के मूल कारण कार्य कारण भाव संबंध की आलोचना इंद्रिय अनुभव को ही एकमात्र ज्ञान मान लेने पर सर्वथा सत्य है। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इंद्रिय अनुभव को ही एकमात्र ज्ञान क्यों माना जाए। ह्यूम ने सबकी आलोचना की किंतु इंद्रिय अनुभव की आलोचना नहीं की। उसको उन्होंने चुपचाप नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया। यही उनका सबसे बड़ा दोष है। यदि वे इंद्रिय अनुभव की आलोचना से अपना दर्शन प्रारंभ करते तो उनके दर्शन का रूप ही और होता। इंद्रिय अनुभववाद का संदेहवाद में परिणत होना स्वाभाविक है, किंतु सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण संदेहवादी हो ही नहीं सकता। ह्यूम भी नहीं हो सके। पूर्ण संदेहवादी का कोई दर्शन, कोई विचार, कोई मान्यता, कोई निश्चय नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 168। संदेहवाद की प्रवृत्ति आत्मघाती है, क्योंकि संदेहवाद के अनुसार स्वयं संदेहवाद ही संदेह का विषय बन जाता है। संदेहवादी का एकमात्र दर्शन है मौन। संदेहवाद उस औषध के समान है जो रोग के साथ साथ रोगी को भी और स्वयं अपने आप को भी समाप्त कर देती है। पूर्ण संदेहवादी पर तर्क प्रहार करना मृतक को मारना है। ह्यूम भी अपने संदेहवाद को अक्षुण नहीं रख सके हैं। वे विज्ञानों के अनंतर्य संबंध को मानते हैं। तर्कशास्त्र और गणित शास्त्र के क्षेत्रों में उनको निश्चित और अनिवार्य सिद्धांत मानने के लिए बाध्य होना पड़ा है। सत्य यह है कि इंद्रिय अनुभव के आधार पर तो हम ह्यूम का इंद्रिय अनुभववाद भी स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि हमारा ज्ञान केवल संवेदन या विज्ञान तक ही सीमित है तो हम केवल मौन रहकर पशुओं के समान ही इंद्रिय अनुभव कर सकते हैं। बुद्धि के विकल्पों की सहायता के बिना इंद्रिय अनुभव में वाणी नहीं आ सकती। यह सत्य है कि इंद्रिय अनुभव से हमें केवल विशेष पृथक पृथक भिन्न और क्षणिक संवेदनों का ही प्रत्यक्ष हो सकता है, और इस आधार पर कार्य कारण संबंध की सार्वभौमता, निश्चितता और अनिवार्यता की सिद्धि नहीं की जा सकती। यह भी सत्य है कि इस मूल सत्य की सिद्धि अनुमान या बुद्धि के विकल्पों से भी नहीं हो सकती, क्योंकि वे स्वयं इस पर निर्भर हैं। फिर प्रश्न यह है कि हमें इस नियम की कल्पना ही क्यों हुई? ह्यूम का उत्तर है, हमारी कल्पना के कारण। किंतु यदि कल्पना बुद्धि का खेल है और बुद्धि में ऐसा कोई तत्व नहीं आ सकता जो संवेदन में न रहा हो, तो बुद्धि में इस नियम की कल्पना भी कैसे आई? ह्यूम का इसके लिए कोई उत्तर नहीं। इससे सिद्ध है कि इस कल्पना का मूल अन्यत्र खोजना होगा। यह कल्पना नहीं है, यह मौलिक सत्य है। यह बुद्धि की, सविकल्प बुद्धि की धारणाओं का मूलाधार है। यह निर्विकल्प स्वतः सिद्ध स्वानुभूति का नियम है। इस नियम के आधार पर बुद्धि कार्य करती है और बुद्धि के आधार पर इंद्रिया अनुभूति विशुद्ध ज्ञान यह निर्विकल्प और स्वतः सिद्ध स्वानुभूति ही है। यह बुद्धि को उसके विकल्प देती है जिनसे वह इंद्रिय अनुभव को व्यवस्थित करके संवेदन मात्र के स्तर से ज्ञान के स्तर पर लाती है। इंद्रिया अनुभव के ज्ञान के इन बीजों को पल्लवित पुष्पित और फलित करता है, उनको उत्पन्न नहीं करता। ज्ञान का उद्गम स्वतः सिद्ध स्वानुभूत में न खोज कर इंद्रियानुभूत में खोजना भयंकर भूल है और इसका आत्मघाती परिणाम वही होगा जो ह्यूम के दर्शन में हुआ। यह स्वतः सिद्ध स्वानुभव ही असली आत्मस्वरूप है। पृष्ठ संख्या 169। इसका निराकरण नहीं हो सकता, ह्यूम भी नहीं कर सके। वे डेकार्त को भूल गए। क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह इसी अधिष्ठान पर होता है। विज्ञान स्वयं अपना अनुभविता नहीं हो सकता। क्षणिक विज्ञानों को मानने पर संपूर्ण व्यवहार का अपलाप हो जाता है जो ह्यूम के दर्शन में हुआ। यह आत्मा द्रव्य नहीं है। इंद्रियां और सविकल्प बुद्धि इसको ग्रहण नहीं कर सकती। यह विशुद्ध और स्वतः सिद्ध ज्ञाता है। यह सिद्धि और असिद्धि की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि ये धर्म इसी पर आश्रित हैं। क्षणिक विज्ञानों की सहायता लेकर इसको ढूंढना, जलती हुई मोमबत्तियों लेकर दिन में सूर्य को खोजने के समान है। ह्यूम ने यही हास्यास्पद कार्य किया। आगे चलकर कांट ने ह्यूम के दोषों को दूर करके बुद्धिवाद और इंद्रिय अनुभववाद के दीर्घ संघर्ष को समाप्त कर दिया। ह्यूम ने कांट को मोह निद्रा से जगाया। ह्यूम का प्रभाव समसामयिक इंद्रिय अनुभववाद, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, वैज्ञानिक प्रकृतिवाद और प्रत्यक्षवाद पर पड़ा है। ह्यूम का प्रत्यक्षवाद मनोवैज्ञानिक और समसामयिक प्रत्यक्षवाद तार्किक है, किंतु दोनों ही असंदिग्ध ज्ञान को गणित तक सीमित रखते हैं तथा वस्तु जगत के ज्ञान को संभाव्य मानते हैं। दोनों ही द्रव्य की ओर अतिंद्रिय आत्मा एवं ईश्वर की सत्ता का निराकरण करते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवाद किसी भी प्रकथन के अर्थ निरूपण के लिए भाषा विश्लेषण करता है। ह्यूम की विधि मनोवैज्ञानिक थी, अतः उन्होंने भाषा विश्लेषण पर ध्यान नहीं दिया। द्वादश अध्याय समाप्त।